الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो इस क्लास में हम सुबह आम की तफसीर पढ़ रहे हैं मार्फ कुरान की जिल्द नंबर 1 से और आयत नंबर 68 से लेके 73 का जो ग्रुप है आयत का मार्फ कुरान में, तो उनके हम खुलासे तफसीर पढ़ रहे थे, यानी तर्जुमा हमने मुकम्मल पढ़ लिया था। खुलासे तफसीर में हम पेज नंबर 369 पे पहुंचे थे। तो अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं और आप के वास्ते से आप के जो उम्मती हैं उनसे भी फरमाते हैं क्या कि जब तुम लोग देखो, जब तुम देखो कि इन लोगों को झगड़ते हैं जो हमारी आयात आयात में, तो उनसे किनारा कश हो जाओ यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाए किसी और बात में। और अगर भुला दे तुमको शैतान तो मत बैठो याद आ जाने के बाद जालिमों के साथ, ठीक है, जब याद आ जाए तो फिर उठ जाओ वहां से। और परहेजगारों पर नहीं है, यानी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर कोई इसका गुनाह नहीं है, झगड़ने वालों के हिसाब में से कोई चीज, जो लोग आयात में झगड़ते हैं तो उनका गुनाह उनके साथ है, ठीक है, तुम्हारा गुनाह तुम्हारे साथ है, उनका गुनाह उनके साथ है। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा, वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो उन पर गुनाह होगा, उनका गुनाह तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा गुनाह उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फरमाया कि परहेजगारों पर नहीं है, यानी जो अल्लाह के हुक्मों को वो मानते हैं और उन पे पाबंदी की वो कोशिश करते रहते हैं, तो जो गुनाह में पड़े हुए हैं उनका गुनाह इनको कुछ थोड़ी मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिवाय इसके के वलाकिन, लेकिन जिक्रा, तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? उनके गुनाहों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जिक्रा, कि तुम उन गुनाहगारों को या उन लोगों को जो के गलत फहमी में मुबतला है उनको तुम नसीहत करते रहो, उनको तुम याद दहानी कराते रहो खैर ख्वाही की नीयत के साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, या ये तुम माशाल्लाह मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो तुम्हारे ऊपर नसीहत करने की जिम्मेदारी है। लअल्लहुम यत्तकून, इस उम्मीद पर के वो लोग भी तकवा वाले बन जाए, जिस तरह माशाल्लाह तुम तकवा वाली हो वो लोग भी तकवा वाले बन जाए, ठीक है। तो ये भी अल्लाह का हुक्म है ना कि याद दहानी कराते रहा करो। और फिर फरमाया वजर लजीना, के छोड़ दो, छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया हुआ है, और हाल उनका यह है, क्योंकि वाव जो है ये हाल के लिए इस्तेमाल होता है आम, तो वाव जो है वो एंड के लिए भी इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी वाला एंड, उर्दू वाला और, लेकिन हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उनका हाल यह है कि उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला हुआ है। जर्रा का मतलब होता है धोखे में डाल देना, ठीक है। तो गर्रत हुमुल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया है। समझना है कि बस दूसरे लोग तो मरते ही रहते हैं, मैंने को थोड़ी मरना है, राइट। दूसरे लोग तो मरते रहेंगे, वो तो कभी कोई मर गया कभी कोई मर गया सिवाय मेरे, तो ये क्या है, ये धोखे में, दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया कि बस मैंने हमेशा इधर ही रहना है। और इसकी और भी बहुत सारी शक्लें कि मर भी गया तो कोई बात नहीं, आगे भी ऐशी ऐश है, आराम ही आराम है मेरे लिए। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ऐश आराम है भाई, जैसे आप जिंदगी गुजारेंगे वैसी आपकी मौत आएगी और वैसे आपके साथ मामला होगा। तो ये सब धोखे हैं जो कि इंसान को दुनिया की जिंदगी की वजह से लग जाते हैं। वदक्किर बिही, और नसीहत कीजिए उनको कुरान को इस्तेमाल करते हुए, बिही कुरान को इस्तेमाल करते हुए उनको नसीहत कीजिए, अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कि कहीं वो लोग गिरफ्तार ना हो जाएं अपने किए की सजा में। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था खुलासे तफसीर में। तो यहां तक के मतलब नसीहत भी करता रहता है कि कोई शख्स, ये जो है पेज नंबर 368 के बिल्कुल आखिरी लाइन है कि नसीहत भी करता रहे ताकि कोई शख्स अपने किरदार बद के सबब अजाब में इस तरह ना फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह ना उसका मददगार हो और ना सिफारिशी हो। ठीक है, यानी ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा काम करे। अपने बुरे काम के सबब अजाब में फंस जाए, ठीक है, लेकिन कोई उसकी मदद करके उसको अल्लाह के अजाब से निकाल ले, इसका मतलब ये नहीं है। बज़ाहिर तर्जुमे से ऐसा लगता है कि अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुनाह के सबब अल्लाह के अजाब में फंस जाए लेकिन कोई गैरुल्लाह जो है वो उसको उस अजाब से बाहर निकाल ले। ठीक है, नहीं, बल्कि जब भी कोई अल्लाह के अजाब में फंसता है ना, तो उसके साथ यही होता है कि कोई अब उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई अब उसको उसके अजाब में से नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो इस आयत का यही मतलब है कि कोई गैरुल्लाह ना उसका मददगार हो जाए, यानी अल्लाह के अजाब से जो मैं जो फंस गया ना, तो अब अल्लाह के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई उसकी सिफारिश नहीं कर सकता। ठीक है, और ये कैफियत हो उसकी कि अगर बिलफर्ज दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले, यानी जब वो अल्लाह के अजाब में फंस गया ना, अब जो है वो दुनिया के मुआवजे दे करके अल्लाह ताला से अपने आप को अजाब से नहीं छुड़ा सकता, यानी पैसा नहीं दे करके अल्लाह को अजाब से छुड़ा सकता, अपनी जमीन दे करके अल्लाह के अजाब से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता, तौबा करके अपने आप को अल्लाह के अजाब से छुड़ा सकता है। और तौबा का मतलब क्या, तौबा का मतलब सदका खैरात करना नहीं होता, बल्कि तौबा का मतलब होता है अल्लाह ताला से माफी मांगना, अपनी गलतियों के ऊपर अल्लाह से माफी मांगना। बस यही एक रास्ता है अल्लाह के अजाब से निकलने का, और कोई रास्ता नहीं है अल्लाह के अजाब से निकलने का। तो ये बात पड़ी थी कि दुनिया भर का मुआवजा ही दे डाल है ना, तो भी अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा यनफउना मा ला यनफउना व ला यदुरुना व नुरद्दु अला अच्छा नहीं, इसके ऊपर वह इन तादिल कुल अदल ला युखज मिनहा। ठीक है, इसका तर्जुमा था कि दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले ना कि उसको खर्च करके अजाब से बच जाए, तब भी उससे ये मुआवजा लिया ही नहीं जाए, तो नसीहत यानी कबूल नहीं किया जाएगा। तो नसीहत से ये फायदा है कि अमाले बद के अंजाम पर तनब्बो हो जाता है। देखें, हदीस में तो ये है कि सदका जो है ना वो अल्लाह के अजाब को टालता है, सही है ना, आप सब नहीं सुनी होगी माशाल्लाह, आजकल तो सबको हदीसें पता है कि सदका अल्लाह के अजाब को टालता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो सदका करें अल्लाह का अजाब टल जाएगा, है यही मतलब है ना इस हदीस का? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब है इसका? सदका अल्लाह के अजाब को टालता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, मुसीबत क्या होती है, अल्लाह का अजाब होता है, तो सदका मुसीबत को दूर करता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है, तो फिर अब आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। जी सदका मुसीबतों को आने से रोकता है, ये भी हो सकता है कि आती ही नहीं है मुसीबतें सदका डालने से, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई तो अब क्या सदका करने से आपकी हिफाजत हो जाएगी, आपको आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। सदका प्रोटेक्ट्स यू, सदका प्रोटेक्ट्स यू। सदका किसी अंकल का नाम है आपके ख्याल में, सदका किसी आंटी का नाम है कि आंटी प्रोटेक्ट्स यू, दे सदका आंटी प्रोटेक्ट्स यू, सदका अंकल प्रोटेक्ट्स यू। अच्छा, गुनाह पर मुतनब्बे हो जाता है तौबा कर लेता है, सदका करने से गुनाह पर मुतनब्बे हो जाता है तौबा कर लेता है। नहीं, गिव सदका एवरी डे इवन इफ वन सऊदी रियाल। चलो इतना तो पता चल गया कि आप सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन क्या मतलब यार, गिव सदका एवरी, डोंट गेट मी रॉन्ग, वॉन्ट यू मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्या मतलब?
देखे, सलाम अलैकुम, आई एम
सबका जवाब
सॉरी,
है, और ये माइक के ऊपर जवाब देने की इजाजत नहीं होती इस क्लास के
ओके,
अंदर।
आई अपोलोजाइज।
जी, फराइज पूरे करें देन सदका प्रोटेक्ट्स यू। अल्लाह ताला के किसी बंदे की मदद से जो उसे खुशी मिलती है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। देखें, सीधी सी बात ये, जो बात चल रही थी ना, ठीक है, जो बात बात चल रही थी ना, आपको सीखना है तो आप सीखें, आपकी मर्जी है। तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि अल्लाह ताला से गुनाह के ऊपर नादिम होने से वो अजाब डरता है, ठीक है, उसके बगैर अजाब नहीं डरता, ठीक है, कोई अमल करने से अजाब नहीं डरता, सदका करने से अजाब नहीं डरता, ठीक है। तो अगर आप बगैर नदामत के सदका कर रहे हैं तो उससे अदा भी डाल। गुनाह के ऊपर नादिम होना शर्त है, ठीक है, उस शर्त को पूरे करेंगे तब सदका देने से जो है वो मुसीबत दूर होती है, अल्लाह ताला जो है वो रास्ते को आसान कर दे, ठीक है। लेकिन ये सदका इत्सेल्फ जो है ना, कोई 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 शख्स नहीं है, कोई हस्ती नहीं है जो कि मुसीबत को टाल दे, मुसीबत को तो सिर्फ अल्लाह ने टालना, हमारे एक्शन ने मुसीबत को नहीं टालना, ये समझाने की कोशिश हो रही है। हमारे एक्शन ने मुसीबत को नहीं टालना, हमारे अमल ने मुसीबत को नहीं टालना, मुसीबत को किसने टालना है? अल्लाह ने टालना, ठीक है। तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म की जो खिलाफ वर्जी करी है उसके ऊपर इंसान को नदामत हो, पशेमानी हो, ठीक है। सदका करने से अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है, और उस नदामत के ऊपर फिर कायम रहना आसान हो जाता है, नदामत के ऊपर कायम रहना आसान हो जाता है इस तरह का कोई अमल करने से, जैसे सदका, ठीक है। तो सदके की क्या सिग्निफिकेंस है, सदके की अहमियत क्या है, कि इससे नदामत की कैफियत में दवाम हासिल हो जाता, अल्लाह ताला अता फरमा देते, दवाम अता फरमा, ठीक है, परसिस्टेंट अता, परसिस्टेंस अता फरमा देते, ठीक है। ये एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि नदामत तो हो नहीं रही गुनाह के ऊपर, शर्मिंदगी तो कोई नहीं है, तो अब जो है ना वो सदका दे करके, यानी किसी कि भाई मैं तो किसी गरीब की मदद कर रही हूँ, मैं तो किसी को मुश्किल से निकाल रही हूँ, तो अब जो है ना मेरी मुश्किल भी दूर हो जाएगी। नहीं, हमारे एक्शन की वजह से मुश्किल दूर नहीं होगी, ठीक है, मुश्किल तो दूर होगी अल्लाह को मनाने से, ठीक है। अगर अल्लाह को मनाने के लिए हम नादिम नहीं हो रहे, अल्लाह ताला से माफी नहीं मांग रहे, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि अब मैं कुछ कर दूंगी या कुछ कर दूंगा तो ये मुसीबत मेरी दूर हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है, ठीक है। तो सदका फिर देने के लिए क्यों फरमाया कि सदके से जो मुसीबत टलती है? भाई, सदके से जो नदामत की कैफियत होती है ना, उसके ऊपर कायम रहना आसान हो जाता है, ये अल्लाह ताला कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अल्लाह ताला के बंदों की मदद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करने से खुश होते हैं, ठीक है, और मदद करने वाले की अल्लाह ताला मदद फरमा, अपने बंदों की मदद करने वाले की अल्लाह ताला मदद फरमा। तो अब वो मदद क्या है कि आपको जो है वो तौबा पे इस्तेकामत नसीब हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से कि आपने तौबा कर ली, अल्लाह ताला से गुनाहों पे माफी मांग ली, शर्मिंदगी इख्तियार कर ली अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। तो अब उसके बाद कोई और आप ऐसा अमल करें जैसे कि बुरी सोहबत को छोड़ा और अच्छी सोहबत इख्तियार करी, ठीक है। तो ये भी एक अमल है कि जिसके जरिए से उस तौबा के ऊपर आपको इस्तेकामत नसीब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सत्ता देना भी एक ऐसा अमल है कि जिससे कि आपको इस्तेकामत नसीब हो जाएगी। व्हाट इज द होल पॉइंट बिहाइंड दिस? द होल पॉइंट इज कि हमारा फोकस जो है ना वो अल्लाह पर होना है, किसी और चीज के ऊपर नहीं होना। फोकस हमारा अल्लाह पे होना है। जब भी अल्लाह से फोकस हटा और किसी भी और चीज के ऊपर गया, बस हम गए, ठीक है। चाहे वो कोई बुरी चीज हो, बजाहिर गंदी चीज हो, बुरा अमल हो, नाजायज बात हो, उसके ऊपर फोकस गया तब भी हम गए। हत्ता के किसी अच्छी चीज के ऊपर हमारा फोकस चला गया और अल्लाह ताला के ऊपर से फोकस हट गया, अमल पे फोकस चला गया, तो भी हम गए, ठीक है। और इसी तरीके से और भी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, अच्छी चीजें, अच्छे लोग, उनके ऊपर फोकस चला गया इस तरह से कि अल्लाह के ऊपर से फोकस हट गया, तब भी हम गए, ठीक है। अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं। जो कुछ भी अच्छा है ना, वो अल्लाह की वजह से अच्छा है, वो अल्लाह के साथ अच्छा है। अल्लाह के बगैर कोई चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। और बुरी चीज तो बुरी है ही इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उसको बुरा कहा है। अपनी जात में कोई चीज बुरी की थोड़ी होती है। जिसको अल्लाह ने बुरा कहा वो अल्लाह वो बुरी है ना, अपनी तरफ से कोई थोड़ी बुरी है, हमारी मर्जी की तरफ वजह से कोई थोड़ी कोई चीज बुरी है, ठीक है। तो ये बात समझाने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। अच्छा आगे के तो नसीहत से फायदा है कि आमाले बद के अंजाम पर तनब्बो हो जाता है, और ये यानी नसीहत करने के लिए कहा ना, ठीक है। तो उससे क्या फायदा है कि बुरे अमाल के जो अंजाम होता है उसके ऊपर आपको तंबीह हो जाती है। आगे मानना या ना मानना ये दूसरा जाने, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो चुनाचे ये तमस्खुर करने वाले यानी दीन के साथ मसखरापन करने वाले ये ऐसे ही हैं कि नसीहत ना मानी, अपने किरदार बद के सबब अजाब में फंस गए, ठीक है। यानी खैरख्वाही के लिए उनको कोई बात समझाने की कोशिश की जा रही थी, नहीं मानी उन्होंने, तो अपने किरदार के सबब ही बिमा कानू यकसिबून व अजाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, जो उन्होंने बुरा काम किया उसकी वजह से अजाब में फंस गए, किसी और की वजह से। जैसे कि पिछले जुमे के बयान के अंदर भी बात हुई थी कि भाई जो भी अजाब में फंसता है वो अपने अमल की वजह से, किसी दूसरे अमल की वजह से नहीं। वला तजीरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई दूसरे के गुनाह के बोझ को जो है वो अपने ऊपर नहीं उठाएगा। हर कोई अपने गुनाह का बोझ खुद ही उठाता है, खुद ही उठाएगा, ठीक है। तो अपने किरदार बद के सबब वो अजाब में फंस गए, जिसका आखिरत में इस तरह जहूर होगा कि उनके लिए नहायत तेज खौलता हुआ पानी पीने के लिए होगा, और उसके अलावा और इस तरह भी दर्दनाक सजा होगी अपने कुफर के सबब, ठीक है। अपने ही कुफर के सबब होगी। यानी कुफर का मतलब क्या होता है? हमारा नजदीक तो कुफर का मतलब जो जाहिरी तौर पर जाहिर हमें जो काफिर नजर आता है, डिनायर ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, उसी को काफिर कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुफर का जो लफ्जी मतलब है वो तो इनकार करना है, डिनाय करना है। तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को डिनाय कर देना कि नहीं, कोई कह दे कि नहीं नबी है ही नहीं, ठीक है, अल्लाह के नबी नऊज बिल्ला ये कह दे कि वो अल्लाह के नबी है ही नहीं, खाली ये नहीं होता कुफर, बल्कि जब नबी की किसी बात को डिनाय कर दे ना कि नहीं ये ऐसे नहीं है, हाँ मैं मानता हूं कि अल्लाह के रसूल हैं लेकिन मैं इनकी बात को कहता हूं कि नहीं ये अल्लाह की बात नहीं है बल्कि ये उन्होंने अपनी तरफ से बना दी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? यानी जो अल्लाह का हुक्म नबी के वास्ते से हम तक पहुंचा है उसका इनकार कर दें, ठीक है। तो ये भी कुफर है। सिर्फ ये नहीं कि ओवरऑल 100% इनकार करेंगे तब कुफर होगा कि नहीं वो तो नबी है ही नहीं, बल्कि जब नबी के बताए हुए हुक्म जो कि अल्लाह का हुक्म उन्होंने बताया उसका इनकार करेंगे तो ये भी नबी का इनकार है। इस बात को अनफॉर्चुनेटली हम आज नहीं समझते, हम काफिर उसको समझते हैं जो कि सिरे से नबी का इनकार कर दे, बस वही काफिर है। जबकि नबी के बताए हुए हुक्म का इनकार करने वाले को हम काफिर नहीं समझते। ठीक है, वैसे तो ये हमने दूसरों के लिए तो अप्लाई करना भी नहीं चाहिए, अपने लिए अप्लाई करना है कि क्या हम नबी के हुक्म को अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं या हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर हमें अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। तो फरमाया कि उनके लिए नहायत तेज खौलता हुआ पानी पीने के लिए होगा और उसके अलावा और इस तरह भी दर्दनाक सजा होगी अपने कुफर के सबब के किरदार बदीही है जिसका एक शोबा तमस्खुर था, यानी किरदार बद यही है, बदीही नहीं था सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, किरदार बद यही है जिसका एक शोबा तमस्खुर था, यानी मजाक उड़ाना दीन का जो है ना वो एक ब्रांच है बुरे किरदार की, लेकिन उसके अलावा और भी शक्लें होती हैं बद किरदारी की। आप मुसलमानों की तरफ से इन मुशरिकीन से कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा तुम्हारी मर्जी के मुवाफिक ऐसी चीज की इबादत करें कि ना वो उसकी इबादत करने की सूरत में हमको नफा पहुंचाने पर कादिर हो, ना वो उसकी इबादत ना करने की सूरत में हमको नुकसान पहुंचाने पर कादिर हो। मुराद इससे आलिहा बातिला है कि बास को तो असलन कुदरत नहीं और जिनको कुछ है वो बिज़ात नहीं। क्या मतलब कि जो पत्थर के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं या पीतल के बने हुए हैं तो उनमें तो हमें कुदरत कोई नजर ही नहीं आती कि वो अपनी मर्जी से हिलजुल भी नहीं सकते, लेकिन जिनको कि हमने जिन इंसानों को हमने अल्लाह ताला का शरीक ठहरा दिया है या अल्लाह ताला के जैसा करार दे दिया है, ठीक है, तो अब उनमें तो हमें बज़ाहिर कुदरत नजर आती है ना कि भाई वो हिलजुल तो सकते हैं, वो तो बात कर सकते हैं, ठीक है, हमारे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, बल्कि अगर उनके पास कुछ माल पैसा हो तो वो हमारी मुश्किल में अपने माल पैसे के जरिए से हमारी मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को फरमाया कि उनके अंदर जो हमें कुदरत नजर भी आती है ना तो ये उनकी अपनी कुदरत नहीं है, उनकी असल कुदरत नहीं है, बल्कि ये कुदरत तो अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए उनको दी हुई है, अल्लाह ही की दी हुई कुदरत है, उनकी अपनी कोई थोड़ी है। ठीक है, तो उसी को फरमाया कि जिनको कुछ है तो वो बिजात नहीं है, यानी उनकी अपनी जात की कुदरत नहीं है, और माबूद में कम से कम अपने मवाफिक और मुखालिफ को नफा व जरर पहुंचाने की तो कुदरत होनी चाहिए ना, तो क्या हम ऐसों की इबादत करें। भाई देखें इंसान के अंदर कुदरत नजर आती है, बहुत कुछ कर सकता है ना, ठीक है, बहुत सी मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन क्या ये कुदरत उसकी जाती कुदरत है, इसकी क्या दलील है कि उसकी जाती कुदरत नहीं है, क्या क्या दलील है ये, चलें आपसे पूछते हैं जैसे कि हम पूछते हैं या कुछ होते हैं कुछ नए आते हैं उनके माशाल्लाह अपना तरीका होता है तो नाराज हो गए चले जाते हैं तब वापस पहुंचा दे, सवाल पूछना तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो जवाब दें कि ये कैसे पता चलता है कि इंसान में जो कुदरत नजर आ रही है तो ये उसकी जाती कुदरत नहीं, कैसे पता चलता है। इंसान में देखें पत्थर के बुत में लकड़ी के पीतल के बुत में तो कुदरत नजर नहीं आती, लेकिन इंसान में तो कुदरत नजर आती है, तो कोई आपसे पूछे कि भाई कुदरत तो नजर आती है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसकी ज़ाती कुदरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल के नौजवान बड़ों से कहते हैं अपने जो दीनदार बड़े होते हैं ना वो उनको कहते हैं कि नहीं इस्लाम इज द इस्लाम असल है, इस्लाम में फायदा है, इस्लाम ही ठीक है, इस्लाम ही में ताकत है और अल्लाह में ताकत है, तो वो आगे से कहते हैं कि आपके जमाने की बातें कर रहे हैं, देखें ताकत तो अमेरिका के पास है, ताकत तो ट्रंप के पास है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उसके पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, उसके पास जो है वो स्पेस प्रोग्राम भी है उसके पास, ये भी है उसके पास, वो भी है। और देखें उसने एक मुल्क था वेनेजुएला, तो उसने जो है वो जरा उसकी बात नहीं मानी ना, तो उसने जो है वो यानी प्रेसिडेंट को ही अगवा कर लिया है, उसी के अपने मुल्क में जा करके इतनी सारी जो है वो सिक्योरिटी को बाईपास करके प्रेसिडेंट साहब को उठा करके ले आए। माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो किसी को किसी के घर से जाके अगवा करके लेकर के आते हैं ना, कराची के अंदर या किसी और हमारे पाकिस्तान के शहर में, वहां तो माशाल्लाह जो मुल्क का सदर है उसी को अगवा करके ले आए। ओहो, देखें कितनी जबरदस्त कुदरत है। आप तो बस जो है ना वो ऐसे ही कहते रहते हैं कि जी इस्लाम में कुदरत है, देखो इस्लाम के बगैर कितनी कुदरत है। अमेरिकन मिलिट्री के पास और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, और तो फिर इसका क्या जवाब है जी? ये कभी भी उनसे छीनी जा सकती, अल्लाह कभी भी उनसे वापस ले सकते हैं। उनके जवाब में ये कह सकते हैं कि उनमें कुदरत होती तो क्या वो उनकी मौत को टाल नहीं सकते हैं, उन्हें क्यों मौत आ जाती। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही जवाब दिया माशाल्लाह आपको उन्होंने। के देखिए, जाती कुदरत तो वो होती है ना जो उससे जुदा ना हो, लेकिन इंसान की कुदरत का क्या मामला है कि एक तो मौत आ जाती है ना, लेकिन मौत से पहले भी तो कोई खुद ही कहता है कि यार मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या डॉक्टर साहब कहते हैं तो मान लेते हैं हाँ वायरल इन्फेक्शन हो गया, अब जो है ना वो मुझे उठने की कुदरत नहीं है, मैं बिस्तर पे लेटा हूं, छींकें आ रही हैं और नज़ला हो रहा है और जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, और अब जो है वो पूरा बदन टूट रहा है। क्या ट्रम्प साहब को बुखार नहीं होता नहीं? या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो अब कितना ही बड़ा मुल्क का कितना ही ज्यादा जो है वो ताकतवर बंदा हो, लेकिन हत्ता कि और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कभी जो है वो गले ही खराब हो गया, अब मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, ठीक है। तो कुदरत तो ये ना होगी ना कि जो कि किसी वक्त भी आपसे चली जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए फिर वापस आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर किसी चीज के अंदर आपको जो है मसला हो जाता है, फिर जो है वो आप जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, फिर कभी बड़ा मसला हो जाता है, और बिल आखिर होते 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 बिल आखिर आप खत्म ही हो जाते हैं, राइट। मौत क्या क्या आपके ट्रम्प साहब को मौत नहीं आएगी, कोई कह सकता है? ट्रम्प खुद भी नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं मरना, मैं तो मरूंगा ही नहीं, कहेगा नहीं कभी, वो इतना बेवकूफ भी नहीं है वो कि वो कहे कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो इतना पावरफुल इंसान हूं, ठीक है। तो अपनी मौत को कभी इनकार नहीं कर सकता, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए अपनी मौत कभी इनकार नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको तो कुदरत नहीं कहते ना, ठीक है। उसी तरह से जो पूरी की पूरी आप किसी सिविलाइजेशन की कुदरत को देखते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इतनी कुदरत है, इतनी कुदरत है, तो भाई आप पीछे भी तो थोड़ा सा जाके देख लें, हिस्ट्री जो है वो बेशक ऐसी नहीं होती कि जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकें, लेकिन आप हिस्ट्री की हर चीज को मिस्ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो आप पीछे थोड़ा सा जाके देख लें, आपको जापानीज सिविलाइजेशन नजर आएगी, आपको जो है यूरोप के अंदर और सिविलाइजेशन नजर आएंगी, आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन नजर आएगी, कितनी ज्यादा ताकत थी, लेकिन कहाँ चलेगी सारी की सारी ताकत, खत्म हो गई ना, ठीक। तो इस तरीके से जो बज़ाहिर कुदरत वाले नजर आते भी हैं, तो उनकी कुदरत जो है वो उनकी बिज़ात कुदरत नहीं होती है। तो बाकी आपने क्या जवाब दिया कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वो उससे नहीं बच पाते हैं, अगर ज़ाती ताकत होती तो कम से कम खुद को बचा सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अक्सर, अच्छा और दूसरा आंसर है कि लेकिन अक्सर औकात छिन जाती है, जैसे किसी बीमारी के सबब या कभी पैदाइशी तौर पे, ठीक है। तो माशाल्लाह बात को समझ रहे हैं ना। अब आगे बात यह है कि देखें, आप इस बात को समझ करके, इन चीजों को सीख करके आगे पहुंचाने की भी कोशिश किया करें, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ना कि हमारे नौजवान इस तरह की बात करते हैं, तो एक तो मुझे वैसे भी अंदाजा है कि हमारे नौजवान आजकल इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझसे चंद दिन पहले एक साहब ने बाकायदा सवाल किया, ठीक है, कि हम जब अपने नौजवानों से दीन के बारे में बात करते हैं ना, तो नौजवान ये जवाब देते हैं, तो हमें उनको कैसे समझाना चाहिए? यानी आई एम नॉट जस्ट कुकिंग दिस अप, मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूं किसी मसले को फिर मैं आपको क्लास के अंदर समझा रहा हूं, बल्कि ये मसला है, राइट, नौजवानों के जहनों में ये सवाल है, ठीक है। लेकिन हम उनके जवाब देने की फिक्र नहीं करते, हम उनके जवाब देने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? तो हमें अपना काम करना चाहिए ना। तो इस वजह से जो दीन की समझ रखने वाले हैं या जो दीन के इल्म हासिल करने वाले हैं, जिनको उनको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि देखिए अल्लाह ने उनको मौका दिया, ठीक है, कि वो दीन का इल्म हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, हकीकत का इल्म हासिल करें। तो अब अल्लाह ताला ने जब ये मौका दिया है तो अब ये हमारे ऊपर एक अमानत है, अब हम इस अमानत को आगे पहुंचाने की फिक्र करें, ठीक है? हमें जब मौका मिले हम इस तरह की बात छेड़ें, ठीक है? हमारे हजरत फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, जहां बैठे वहां तेरा फसाना छेड़ देते हैं, ठीक है? तो अब कोई आपसे सवाल नहीं भी कर रहा ना, तो भी आप पूछें कि बच्चा सवाल करो, बेटा सवाल करो, बेटी सवाल करो, पूछो, ठीक है? बहुत सारे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आप इस तरह से लोगों को एनकरेज करेंगे ना सवाल पूछने के ऊपर, तो कोई पूछेगा भी, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो कि सवाल पूछेंगे, ठीक है? एज्यूम ना करें कि लोगों को पहले से सब पता है, लोगों के पास इल्म मौजूद है, एज्यूम ना करें, आप यकीन करें, एज्यूम ना करें, आप यकीन करें, लोगों के पास इल्म नहीं है, लोगों के पास इल्म नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ना होने के बराबर इल्म है, लेकिन मसला यह है कि ना वो पूछते हैं ना कोई उनसे पूछने की कोशिश करता है कि भाई आप बताएं क्या सवाल है आपके पास। तो अजम्पशंस की बुनियाद पे चल रहा है मामला, गुमान की बुनियाद पे मामला चल रहा है कि हाँ जी कोई समझता है कि सबको पता है और कोई समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, ये गुमान है, अपने बारे में गुमान कि मुझे सब कुछ पता है, दूसरों के बारे में गुमान कि उनको तो पहले से पता है, ना अपने बारे में गुमान सही है ना दूसरों के बारे में गुमान सही है। तो इल्म के बारे में गुमान नहीं करना चाहिए कि जी पहले से पता है, बल्कि इल्म की बात करनी है, और अगर कोई आपसे नहीं कर रहा तो जहां मौका देखें वहां उनको जरा सा छेड़ें कि भाई पूछें ना आप, हमें आता होगा तो बता देंगे, नहीं आता होगा तो हम पूछ के बता देंगे अपने बड़ों से, अपने टीचर से, ठीक है? इसमें शर्मिंदा शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं आता हुआ तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, है? नहीं, कोई नहीं बेइज्जती होगी इससे, ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला की इज्जत बढ़ जाएगी इससे, ठीक है? तो आगे फरमाते हैं कि यानी शर्क के माबूद में कम से कम अपने मवाफिक और मुखालिफ को नफा व जरर पहुंचाने की तो कुदरत होनी चाहिए ना, तो क्या हम ऐसों की इबादत करें कि जिनके पास नहीं है ये कुदरत? तो क्या माज अल्लाह हम इस इस्लाम से उल्टे फिर जाएं बाद इसके कि हमको खुदा ताला ने तरीके हक की हिदायत कर दी है? यानी अव्वल तो शिर्क खुद ही कबी है, फिर खुसूसन बाद इख्तियार इस्लाम के तो और ज्यादा ये सुनी चीज और ज्यादा बुरी चीज है, कि एक दफा आपको जब बात समझ में आ गई यानी आपको इल्म पहुंच गया दलाइल के साथ, क्योंकि इल्म तो होता ही दलील के साथ, जो बात होती है उसी को इल्म कहते हैं, बगैर दलील के बात को तो इल्म कहते ही नहीं, ठीक है? तो ये नहीं कह रहे कि सुनी सुनाई बात तुम तक भी पहुंच गई तो अब तुम्हें तो इस्लाम मिल गया, सुनी सुनाई बातें सुन करके तुम्हें इस्लाम की हिदायत मिल गई तो अब तुम उसके ऊपर कायम रहो, नहीं, बल्कि तुम तक अल्लाह ताला ने दलील के साथ इस्लाम की हकीकत खोल दी है, अब तुम उसके ऊपर कायम रहो, ठीक है भाई? इस्लाम जो है वो तो इल्म के जरिए से इंसान के पास आता है कि भाई हकीकत क्या है, लेकिन वो इल्म वही होता है जो कि दलील के साथ है। हम जो इस्लाम पे अमल कर रहे होते हैं ना, हम इल्म की वजह से इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे होते, अक्सर औकात मोस्ट ऑफ द टाइम हम इल्म की वजह से दीन पे अमल नहीं कर रहे होते, बल्कि किस वजह से अमल कर रहे होते हैं, देखा देखी, गुमान की बुनियाद पर, कि अच्छा जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही होगा, ठीक है? जिसको लोग इस्लाम कह रहे हैं तो वो वही इस्लाम होगा, ये गुमान कर लिया आपने, ठीक है? सुनी सुनाई बातों को इस्लाम समझ लिया, देखी दिखाई चीजों को दीन समझ लिया, तो जैसे सब कर रहे थे वैसे ही करना शुरू हो गया, कभी कभार तो तुक्का लग जाता है, तुक्का लगना कहते हैं ना, वो कभी तुक्का एक्चुअली होता नहीं है असल में, हकीकत ये एक मुहावरा है तुक्का लग जाना, ठीक है। तो कभी कभार जो है ना वो तुक्का लग जाता है, वो भी तुक्का क्यों लग जाता है, वो भी अल्लाह ताला किसी वजह से इंसान को जो है ना वो डाल देते हैं सही रास्ते के ऊपर, कोई वजह होती है अल्लाह के पास जब भी उसको सीधे रास्ते पर डाल देते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना तुक्का नहीं लगता, बल्कि क्या होता है, देखा देखी जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं ना तो वो गलत कर रहे होते हैं फिर, ठीक है। क्यों गलत करना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों गलत आप कर रहे होते हैं देखा देखी करने के ऊपर, क्योंकि आपने इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है, सीखने की कोशिश ही नहीं करी, बस देखा देखी सुनी सुनाई, ठीक है। तो ये तो इस्लाम फिर जो है ना, बस मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत इस्लाम ही होता है, ये सही इस्लाम नहीं होता, ठीक है। तो सही इस्लाम क्या होता है, जो कि इल्म के साथ हमने सीखा होता है, यानी जिसका इल्म हासिल किया होता है, ठीक है। और इल्म क्या चीज होती है, दलील के साथ जो बात होती है वो इल्म, तो हमने दलील के साथ जब सीखा है ना तब वो इस्लाम सही इस्लाम, उसके बगैर का इस्लाम सही इस्लाम नहीं होता, ठीक है, अनलेस के तुक्का लग रहे वरना वो सही इस्लाम नहीं। तो जब आपके पास एक दलील पहुंच गई और आपने उसको तस्लीम भी कर लिया अल्लाह की तौफीक से, मान भी लिया आपने, अब उसके बाद अगर वहां से आप पीछे हट गए, आपने उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो अभी तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मसला है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। इसी वजह से मुर्तद, मुर्तद कौन होता है कि जो कि दीन इस्लाम के ऊपर है, ठीक है, यानी सही दीन इस्लाम के ऊपर है, दलील वाले दीन इस्लाम के ऊपर है, देखी दिखाई दीन इस्लाम के ऊपर नहीं, सही दीन इस्लाम के ऊपर है, वो जब इस्लाम को छोड़ देना तो अब उसको मोहलत दी जाएगी कि तुम वापस आ जाओ, अगर इस्लामी हुकूमत है तब इस्लामी हुकूमत उसको मोहलत देगी, अब तुम वापस आ जाओ, ठीक है, और अगर तुम वापस नहीं आ रहे हो तो फिर तो मुर्तद की सजा मौत होती। आजकल तो जाहिर इस्लामी हुकूमत है ही नहीं ना, तो इस वजह से ये सारी चीजें खत्म हो चुकी, जब वापस आएगी अल्लाह ताला के हुक्म से इस्लामी हुकूमत फिर से दोबारा से ये चीजें होंगी, लेकिन इस वक्त तो है ही नहीं कोई, तो इस वजह से मुर्तद की कोई सजा नहीं होती, हर बंदा ही मुर्तद, नाउज बिल्ला सुबह नाउज बिल्ला, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुर्तद हो चुके हैं और हुए चले जा रहे हैं, कोई सजाए मौत वगैरह कुछ नहीं। लेकिन समझाने की बात यहां पर यह है कि ये कितना बुरा काम है कि जब एक दफा आपके पास दलील के साथ इल्म पहुंच गया और आपने उसको तस्लीम कर लिया, अब आप जो है वो उसको छोड़ दें, ये इतना बुरा काम है कि अल्लाह के यहां तो उसका अजाब आखिरत में है ही, दुनिया में भी उसको, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो दुनिया में भी उसको अजाब दिया जाएगा, ठीक है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों का अजाब होता है ना कभी, कि कोई गुनाह है जिसका कि दुनिया में कोई सजा वजा नहीं मिल रही, आखिरत में मिलेगी, जबकि इसके मुकाबले में वो गुनाह जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है वो ज्यादा बड़ा गुनाह समझा जाता है ना। मिसाल के तौर पर माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, माँ बाप के साथ जो है वो बुरा मामला करना, नाफरमानी का मामला करना, हालांकि वो नेकी का हुक्म कर रहे थे, गुनाह का हुक्म तो नहीं कर रहे थे, नेकी का हुक्म कर रहे थे, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानता बिल्कुल। तो सुना है ना आपने अच्छी तरीके से कि माँ बाप का जो नाफरमान होता है, ठीक है, तो उसको दुनिया में भी सजा मिलती है और आखिरत में भी सजा मिलती है ना, वही वो कितने कितना बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, कि जी दुनिया में भी गुनाह मिलेगा, यानी दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे बड़ा हो गया ना ये मसला। उसी तरीके से जब इल्म के साथ दीन पहुंच जाए, अब उसको छोड़ दे तो दुनिया में भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत के अंदर भी अजाब दिया जाएगा, ठीक है, वरना अक्सर काफिर को बजाय दुनिया के अंदर अजाब नहीं मिल रहा होता, आखिरत में उसको अजाब मिलेगा, दुनिया में तो कोई उसको सजा वजा नहीं मिल रही होती है, ठीक है। आजकल जो लड़कियां कसरत से मुर्तद हो रही हैं, इन्होंने सवाल लिखा है कि आजकल जो लड़कियां कसरत से मुर्तद हो रही हैं तो क्या उनके भी पास इल्म दलील वाला नहीं है, क्या उनके पास भी दलील वाला इल्म नहीं है? भाई ये तो उनसे जाके पूछे ना कि उनके पास है कि नहीं है, मुझे क्या पता उनके पास है कि नहीं है। ये तो हर बंदे का एक इनफरादी मामला है कि भाई फलानी लड़की जो है उसने काफिर लड़के से शादी कर ली और वो वाकई हिंदू बन गई, तो क्या उसके पास इल्म था या उसके पास इल्म नहीं था? तो इंडिविजुअली स्पीकिंग हकीकतन तो वो खुद ही बता सकती है ना, या उससे बात करेंगे तब पता चलेगा उसके पास इल्म था कि नहीं था। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी जरा सी डिमीनिंग किस्म का आंसर जो किसी को बहुत नाराज भी हो जाता है, नाराज हो जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल हालात चल रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के, मेजॉरिटी लोगों के, ठीक है, ओवरऑल जैसे हालात चल रहे हैं उनको जब हम देखते हैं, तो एक जहन के अंदर जो पिक्चर बनती है ना मुसलमान लड़कियों की और मुसलमान लड़कों की और मुसलमान बड़ों की और मुसलमान यानी मर्दों की और मुसलमान औरतों की और बूढ़ों की और बूढ़ियों की, जो जनरल एक पिक्चर बनती है उम्मत के अहवाल को देखते हुए, तो उसके हिसाब से यही पिक्चर सामने आती है कि दलील वाला इल्म किसी के पास इल्ला माशा, दलील वाला इल्म किसी के पास नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह जो हासिल करे उसके पास है वरना नहीं है। ठीक है, ये एक ओवरऑल बिग पिक्चर है, लेकिन इनफरादी तौर पर तो हर बंदे का अपना मामला है, हो सकता है किसी के पास हो सकता है किसी के पास ना हो, हमें क्या पता भी। ठीक है, तो ये जो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और मुमलकत खुदादा पाकिस्तान के अंदर नहीं मुर्तद हो रही हैं, नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं और दूसरी जगहों पर भी हो रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि नहीं, दलील वाला इल्म नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकसूर है कि दलील वाले इल्म तो हमारे पास है नहीं इस वजह से हम मुर्तद हो रही हैं, तो हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। कसूर तो उनका भी है, क्यों क्यों कसूर उनका है? क्योंकि भाई इल्म नहीं होता तो इल्म सीखना होता है ना। ठीक है, तो इल्म क्यों नहीं सीखा भाई, क्यों नहीं कोशिश करी? ठीक है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगा? सही, तो अल्लाह ताला से मांगती है अगर कि अल्लाह मुझे आप सच तक पहुंचा दें, हक तक पहुंचा दें, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको हकीकत का इल्म ना पहुंचाए? अल्लाह ताला पहुंचाएंगे किसी मौलवी साहब को या किसी आलिमा साहिबा को उनके घर पे पहुंचाएंगे, किसी शैतानी साहिबा को उनके घर पे पहुंचाएंगे जो उनको हकीकत का इल्म सिखाएगी, अल्लाह पहुंचाएंगे ना। लेकिन आपने अल्लाह से मांगे ही नहीं, आपने तो बस जो कॉलेज में लड़का था, ठीक है, तो उस लड़के के साथ जो है वो आपने बातें करनी शुरू कर दी और उसकी जो है वो फलानी कोई चीज आपको अच्छी लग गई, आपने जाके उससे शादी कर ली और आप जो है वो उसकी के दीन के ऊपर चली गई, बीच में अल्लाह तो था ही नहीं कहीं, अल्लाह से तो कभी बात ही नहीं हुई। ये तो नहीं हो सकता ना, ये जो जो 100% हमें पता है, जो बात जो जिस जिस पर हमारा यकीन है, वो ये क्या, वो ये है कि अगर अल्लाह से कोई मांगता है ना, तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको छोड़ दे, उसको किसी और के हवाले कर दे और उसको इल्म ना पहुंचाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अदत गलती यूजली माँ बाप की ये होती है कि शायद के हम अपने बच्चों को आमाल से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ पाते, उनको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला है कौन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और बल्कि साजिद ने जो पहले मुताला कर रहा था तो ये बात यहाँ पे लिखी भी थी, और जुमे के दर्स में एक्चुअली इसको कुछ समझाने की शायद नाकाम कोशिश भी करी थी। ठीक है, तो मेरे का दर्श अगर आप सुने, जब अभी तो रिकॉर्डिंग आई नहीं है, अगर आपने लाइव सुना हो तो फिर आपने पहले से सुना हुआ होगा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग आई तो आप सुन लीजिएगा कि आखिर में यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी, कोशिश करी थी हमने कि आमाल से जो जोड़ना है ना, आमाल से जोड़ना, ये तो उसको जोड़ोगे ना जिसको के अल्लाह का एहसास हो, जो कि अल्लाह को वो यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक जिसका बना हो। ठीक है, जिसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अमाल के साथ आपने उसको जोड़ दिया, तो वो तो ऐसे ही है जैसे किसी और ने अपने अमाल अपने हिसाब से किसी भी अमल से जोड़ दिया किसी को। जिसको वो सही समझता था उसने उसको जोड़ दिया। अल्लाह का एहसास, अल्लाह का ख्याल कि असल तो अल्लाह है, आमाल तो वो हैं जो कि अल्लाह तक पहुंचाने वाले, अल्लाह ताला को राजी करने वाले आमाल हैं, ठीक है। तो उनकी शक्ल ये है कि देखें नमाज जो है वो दिन में 5 दफा पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका है ना नमाज का, ठीक है, जो कि एक मुसलमान क्लेम करता है कि देखो अल्लाह को जो है ना वो अल्लाह का हुक्म यह है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी और वो ऐसे पढ़नी, ठीक है। हमें क्यों इस बात का पता है? क्योंकि हमें एतमाद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये 5 नमाजों का तरीका ये बताया है, और ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा, फिर सहाबा से ताबीन ने सीखा, ताबीन से तबा ताबीन ने सीखा, और फिर ये होते होते हत्ता की किताबों में भी इसको लिख दिया गया, तो उस वक्त से ये प्रिजर्व हमारे पास आ रहा है। तो हमें एतमाद है कि ये यही तरीका है नमाज पढ़ने का और नमाज अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। लेकिन कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, तो वो तो अपनी नमाज इस तरीके से नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि वो तो नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं मानता, या वो जो है वो आपके किताबों को नहीं मानता जिन किताबों के अंदर नमाज का तरीका लिखा हुआ है कि भाई हाँ ये अल्लाह के हुक्म वाली किताब है, वो उनको नहीं मानता, ठीक है। लेकिन क्या वो अल्लाह को भी नहीं मानता? वो अल्लाह को तो मानता है ना, ठीक है, अल्लाह को तो वो मानता है कि हाँ कोई है बड़ा, ठीक है, कोई पावर है, कोई हस्ती है, ठीक है। तो बंदे को उससे तो जोड़े ना हम, जिसको कि वो पहले से मानता है, उसकी हकीकत बयान करें, उसकी अजमत बयान करें, उसकी मोहब्बत बयान करें, ठीक है, कि वो जो अल्लाह है ना वो सिर्फ मेरा अल्लाह नहीं है, ए हिंदू वो तुम्हारा भी अल्लाह है, ए ईसाई वो तुम्हारा भी अल्लाह है, या ए नौजवान मुसलमान नाम वाली लड़की, नाम तो तुम्हारा मुसलमान है लेकिन तुम मुर्तद सी हो गई हो, तुम जो है वो नमाज को मानती नहीं हो कि नमाज भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो तुम अल्लाह से तो जुड़ो ना, अल्लाह से तो मांगो ना कि अल्लाह जो आपको रास्ता पसंद है आप मुझे उसके ऊपर चला दीजिए, ठीक है। इबादत का जो तरीका आपको पसंद है, आप जिस तरीके को डिमांड करते हैं हमसे, अल्लाह मुझे उस तरीके के ऊपर चला दीजिए, और आप उसको एहसास दिलाएं कि अल्लाह ताला जो है ना ये तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला से तरीके की दुआ मांगो, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगो, क्योंकि वो अल्लाह सिर्फ मेरा अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह तुम्हारा भी अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह से जोड़ना ये असल काम है, और तरीका इबादत ये अहम जरूर है लेकिन ये सबसे अहम नहीं है, ये दूसरे नंबर पर अहम है, ये दूसरे नंबर पर अहम, जिसकी अहमियत को आप जो है वो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह से जुड़ने से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह से जुड़ने से साथ साथ इसको जरूर लगाना है, क्योंकि हमारे नजदीक हमारे हमारे पास दलील मौजूद है कि ये तरीका जो है वो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, आम अल्फाज में कहने का मकसद क्या है कि देखें अल्लाह से मांगने का तरीका जो है ना उसको क्या कहते हैं, दुआ। अल्लाह से मांगने का तरीका को दुआ कहते हैं। क्या दुआ की कोई शक्लो सूरत है कि उसके लिए आपको सीधा खड़ा होना जरूरी है, उसके लिए आपको हाथ जो है वो कानों तक उठाने जरूरी है दुआ मांगने के लिए, उसके लिए आपको हाथ जो है वो ऐसे बांधने जरूरी है, उसके लिए आपको जो है वो रुकू में जाना जरूरी है, उसके लिए आपको जो है वो सजदे में जाना जरूरी है, दुआ के लिए तो कोई तरीका नहीं है, राइट। दुआ तो ऐसी यूनिवर्सल चीज है जो कि हर इंसान, चाहे मुसलमान, चाहे काफिर, चाहे हिंदू, चाहे मुशरिक, चाहे ईसाई, यहूदी, बुद्ध, जो भी हो, दुआ का एक ही तरीका है, हर एक के लिए एक ही तरीका है, ठीक है। तो दुआ जो है ना ये असल चीज है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ, और इसका कोई तरीका नहीं है, बस बातचीत है अल्लाह ताला के साथ, दिल की तार है अल्लाह ताला के साथ जुड़ी हुई। ठीक है। तो ये सबसे अहम चीज है, और फिर जो इबादत का तरीका होता है ये इसके बाद आता है, ठीक है। और फिर आप इबादत के बाद दोबारा से दुआ अल्लाह ताला से करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि भाई इबादत करने के बाद भी अल्लाह ताला से दुआ करो, ठीक है। असल चीज जो है वो अल्लाह का ताला, ठीक है। अल्लाह ताला को जब कोई पुकारता है ना और उससे हिदायत मांगता है, तो अब अल्लाह ताला इंतजाम करते उसको हिदायत का तरीका भी सिखला देते हैं जो अल्लाह ताला के लिए पसंदीदा है, और उसको जो है वो बुरे तरीकों से रोकने का भी इंतजाम कर देते हैं। तो हमें असल में जो है ना, वो अपने आप को भी, अपनी औलाद को भी, और चाहे कोई दूसरा बंदा भी हो, ठीक है, बज़ाहिर मुसलमान भी हो या बज़ाहिर वो मुसलमान ना भी हो, वो अल्लाह ताला से जोड़ना है। बाकी जब वो अल्लाह ताला से जुड़ गया, अब अल्लाह ताला जो है ना वो उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे। फिर वो आपसे आकर ये भी पूछेगी कि अब मुझे ये भी बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो अब आप उसको नमाज भी पढ़ना सिखा दीजिए, ठीक। अच्छा, और क्या है जो कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे करना चाहिए, आप बता दीजिए। रोजा, रमजान मुबारक का महीना आने वाला है माशाल्लाह, 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि ये रोजा भी रखना चाहिए, अब आप उसको रोजा रखना भी बता दीजिए, ठीक है। तो अल्लाह के बगैर आमाल नहीं है, अल्लाह के साथ आमाल है, ठीक है। क्या उन्होंने लिखा, जब अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार मुश्किल ये होती है कि अपने दिल में आने वाली बात को अल्लाह की, कि ये अल्लाह की तरफ से है या इससे नफ्स को खुशी मिलने वाली है, हम समझ नहीं पाते। कि दिल में जो बात आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये बात अल्लाह की तरफ से है या ये नफ्स को खुशी मिलने वाली बात है, कि नफ्स खुश हो रहा है इससे, ये हम समझ नहीं पाते। नफ्स ये एहसास दिलाता है कि ये नेक अमल में से है, फिर अमल करने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने ये गलत किया। देखें, आप तो जो बात कर रही हैं ना, तो आप वो तो नहीं है ना कि जो के नऊज बिल्ला कुरान का इनकार करते हैं, यानी कुरान अल्लाह की किताब नहीं, या जो इनकार करते हैं कि नहीं दीन का कोई तरीका वरीका कोई नहीं है, बस लोगों ने बना लिया ये तरीका, आप उनमें से तो नहीं है ना, ठीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हिंदू ये बात नहीं कहता, बल्कि आजकल अनफॉर्चुनेटली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बल्कि स्कूल का मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान बच्चा भी यही कहता है कि क्या तरीका, कोई तरीका सही नहीं है, बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस जिसकी जो मर्जी है वैसे वो अल्लाह ताला को राजी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान घराने के बच्चे बच्चियां इस तरह की बात करते हैं, और बूढ़े बूढ़ियां भी इस तरह की बातें करते हैं। आप तो उनमें से नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपके सवाल से तो पता चल रहा है कि आप जो है वो कुरान को मानती हैं, नबी अलैहिस्सलाम को भी मानती हैं, हदीस को भी मानती हैं, सुन्नत को भी मानती हैं, सीरत को भी मानती हैं, बल्कि उलमा को भी मानती हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपका जो ये सवाल है कि हमें पता नहीं चलता कि ये बात जो है वो अल्लाह की तरफ से है या ये बात जो है वो बुरा अमल है, बाद में हमें एहसास होता है, तो भाई ये क्यों ऐसा होता है आपके साथ? उसकी वजह ये होती है कि आपने इल्म नहीं हासिल किया कि कौन सा अच्छा अमल है कौन सा गलत अमल है। उसकी वजह यही है ना कि भाई कुरान को मानती तो है लेकिन कुरान से इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। सुन्नत को मानती तो है लेकिन सुन्नत में सही बात क्या बतलाई गई है और गलत बात क्या बतलाई गई है उसका इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही, ठीक है। बल्कि अमल जो है वो पहले कर लेती हैं, फिर बाद में शायद आपका जमीर आपको मलामत करता है या कोई और आपको बस एहसास होना शुरू हो जाता है फॉर सम रीजन कि जी मैंने गलत काम किया। भाई इल्म क्यों नहीं हासिल किया, ठीक है। इल्म के बगैर अमल करने की तो फिर बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। फिर वो तो वही होता है अजम्पशन वाला, When you assume, then you make an ass out of you and me, ठीक है भाई। पहले सीखना चाहिए था, फिर अमल करना चाहिए था ना। तो आपका तो जवाब बहुत आसान सा है कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए, ठीक है। इल्म हासिल करने के लिए फिर जो इल्म वाले हैं उनके पास जाना होता है, और फिर वो जैसे गाइड करते हैं कि जी ऐसे ऐसे इल्म हासिल करना, वैसे वैसे इल्म हासिल करना, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपके सवाल से ये भी है जो कि बड़ी गलतफहमी लोगों को ये भी लगी हुई है कि अगर आपको कोई खुशी महसूस हो रही हो ना दिल के अंदर कोई अमल करने से, तो इसका मतलब यह है कि वो अमल अल्लाह के लिए नहीं था, वो नफ्स के लिए था। ठीक है, ये भी एक बड़ी गलतफहमी हो गई है। नफ्स के पहले पहले तो हम लोग नफ्स के लफ्ज से वाकिफ नहीं थे, लेकिन जब अब सुन सुन करके माशाल्लाह नफ्स के लफ्ज से हम वाकिफ हो गए हैं कि नफसानी खुशियां और नफसानी जो है वो चाहते और नफसानी मोहब्बतें, ठीक है, अब जो है ना वो हम दूसरी तरफ स्विंग कर गए और हम ये समझना शुरू हो गए हैं कि अच्छा नफ्स किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि हमारे अंदर है और उसको जो है वो दुनिया की चीजों से लज्जत मिलती है। तो अगर नफ्स को लज्जत मिल रही है, यानी अगर हमें कोई चीज टेस्टी लग रही है, खाने की कोई चीज अगर हमें टेस्टी लग रही है, या अगर हमें अपनी औलाद को देख करके जो है वो खुशी महसूस हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हम, बल्कि ये नफ्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि नफ्स खुश हो रहा है इससे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि अगर जो है वो आपको अंदर कुछ राहत और खुशी और इत्मीनान किसी बात से मिल गया तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के लिए नहीं थी, वो नफ्स के लिए थी। ऐसा हरगिज नहीं। आप में से किसी ने बल्कि कल परसों ये सवाल किया था, तो उनको बल्कि जवाब भी दिया था कल, कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर मिलने के लिए गई, नियत आपकी क्या थी अल्लाह को राजी करना, कि भाई अल्लाह ताला ने की चाहत है कि रिश्तेदारियां निभाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया रिश्तेदारियां निभाने के लिए, ठीक है। तो अब आप नबी अलैहिस्सलाम के बताने की वजह से कि ये अल्लाह को राजी करता है ये अमल, आप किसी रिश्तेदार के घर चली गई, ठीक है। अब रिश्तेदार ने आपको मजे के जो है ना वो कोई खाना खिला दिया, बेहतरीन चाय पिला दी, बेहतरीन नाश्ता आपके सामने रख दिया, आपने उसको खा लिया। अब जब आपने खाना खाया तो आपको बड़ी लज्जत महसूस हुई खाने की वजह से, आपने चाय पी, ओहो आपको बेहतरीन मजा आया चाय पीने की वजह से। तो अब जब आपको ये मजा आ गया चाय का और खाने का, तो इसका क्या मतलब है कि अब ये अमल आपका नफ्स के लिए हो गया, अल्लाह के लिए नहीं रहा अब ये अमल, नहीं, ठीक है। बल्कि नियत तो आपकी अल्लाह को राजी करने की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उसमें मजा भी अता फरमा दिया, तो मजा अता होने की वजह से वो अमल जो है वो नफ्स के लिए अमल को थोड़ी हो गया, वो तो अल्लाह के लिए अमल आपने किया था ना, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप अल्लाह के लिए जाती वहां पर, लेकिन वहां पे जो है ना वो नाउज बिल्ला वो आपको शराब पेश कर देती और आप जो है वो शराब पी करके कोई आपको टेस्ट मिल जाता, शनाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, शराब का टेस्ट मिल जाता, ठीक है। अब ये चूंकि आपने शरीयत के खिलाफ एक अमल कर लिया, तो इसकी वजह से जो है ना वो आपका वो अमल खराब हो, कि भाई आपने अल्लाह को राजी करने के लिए कोई अमल किया, लेकिन उसके अंदर आपने अल्लाह की नाफरमानी से क्यों नहीं बची, तो वो गलत होता, वो नफ्स के लिए हो जाता फिर। लेकिन अगर हलाल तरीके से आपको कोई लज्जत मिल गई, वो नफ्स वाली लज्जत नहीं होती, वो तो ऐसा है कि जैसे अल्लाह ताला ने आपको आखरत का सवाब भी दे दिया और दुनिया की भी लज्जत अता फरमा दी, ठीक है। तो आपके चौके लफ्ज के अंदर ये एक जुमला आ गया था, इस वजह से ये बात भी समझा दी, क्योंकि किसी और ने ये सवाल किया था परसों ही, तो उनको ये बात समझाई थी इसी वाली मिसाल के जरिए से, कि भाई नफ्स को लज्जत मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि काम जो है वो अब नफ्स के लिए हो गया, अल्लाह के लिए ना रहा। लेकिन ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कभी, जाहिर है फिर इल्म हासिल करने से वो कंफ्यूजन अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी देर हो गई, क्लास का टाइम गुजरे हुए, तो हम यहाँ पर क्लास आज की रोकते हैं। वाह, अलहमदुल्ला।